चैप्टर 10। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आधी रात को रुद्र विला वापस आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में आते ही उसकी नजर बेड पर चली जाती है और बेड पर अपनी रूह को ना सोता हुआ देख रुद्र की आंखों में गुस्सा आ जाता है कि आखिर इतनी रात को उसकी रूह गई तो गई कहां। रुद्र रूही को ढूंढने जैसे ही कमरे के बाहर जाने वाला था तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ती है जिस पर हल्का हल्का खून लगा था क्योंकि वे अभी अभी अपने दुश्मन को मार कर आया था। इस वजह से उन सभी के खून के कुछ छींटे रुद्र के ऊपर भी पड़ गए थे, जिसे देख रुद्र बाथरूम में पहले फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में रुद्र फ्रेश होकर वापस आता है। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहनकर रखा हुआ था। फिर वे अपने रूम से निकल नीचे रूही को ढूंढने चला जाता है। नीचे सभी जगह ढूंढने के बाद भी जब उसे रूही कहीं पर भी नहीं मिलती तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में ही बोला, रूह कहाँ गई तुम? तुम्हें इस तरह बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आज़ादी दे रखी है। अब बस तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे दूर जाने का क्या अंजाम होता है। इतना बोल वे कुछ सोच परी को फोन लगाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हो या ना हो उसकी रूह इतनी रात को परी के रूम में ही हो सकती है। वहीं परी के रूम में परी जो आराम से चैन की नींद सो रही थी, तभी उसे अपना फोन वाइब्रेट होता हुआ नजर आया। अपने फोन को वाइब्रेट होता हुआ देख परी नींद में ही अपने मोबाइल को उठा देखने लगती है कि ऐसा कौन आ गया जो अब रात में भी चैन की नींद उसे सोने नहीं दे रहा। वे अपनी हल्की सी आंखें खोल अपने मोबाइल पर फोन करने वाले का नाम देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने शैतान भाई के नाम पर जाती है वैसे ही उसे एक झटका सा लगता है और वे तुरंत अपनी आंखें खोल उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से सारा नींद एक पल में ही गायब हो जाता है और वे अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, ये मेरा शैतान भाई इतनी रात को मुझे क्यों फोन कर रहा है। तभी उसकी नजर अपने बगल में सोई हुई रूही पर पड़ती है, जिसे देख वे सारी बात समझ जाती है कि आखिर उसका शैतान भाई उसे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है, जिसे समझ वे खुद से ही बोली, ये रूही की बच्ची खुद को मरेगी ही, मुझे भी मरवाएगी। इतना बोल वे भगवान का नाम ले डरते हुए फोन उठा लेती है। फोन को उठाते ही उधर से रुद्र की कोल्ड आवाज उसके कानों में पड़ती है, मेरी रूह कहाँ है? रुद्र की कोल्ड आवाज अपने कानों में महसूस कर परी डरते हुए बोली, वे भाई रूही यहां मेरे कमरे में मुझसे बातें करते करते ही सो गई, इसलिए मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। परी की बात सुनकर रुद्र फिर से अपनी कोल्ड आवाज में ही बोला, ठीक है मैं उसे लेने आ रहा हूँ, दरवाजा खोलो। रुद्र की बात सुनकर परी हाँ बोल देती है, जिसे सुन रुद्र तुरंत कॉल कर परी के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं रुद्र के कॉल करते ही परी अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है क्योंकि रुद्र से बात कर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांस ही नहीं आएगी। कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद परी तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी होती है और दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देती है तो देखती है कि रुद्र पहले से ही वहां खड़ा है, जिसे देख वे साइड हो जाती है। परी के साइड होते ही रुद्र अंदर जाता है तो देखता है कि रूही आराम से बिस्तर पर चैन की नींद सो रही है, जिसे देख रुद्र उसे अपनी गहरी नजरों से देखता है। फिर झुककर यूज अपने गोद में उठा परी के रूम से निकल जाता है। रुद्र के जाते ही परी की सांस में सांस आती है और वे तुरंत दरवाजा बंद कर बिस्तर पर जा आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र रूही को लेकर अपने रूम में आता है और दरवाजा बंद कर अपनी शर्ट को उतार एक साइड रख देता है। उसके बाद बिस्तर पर रूही के बगल में लेटकर अपने सिर को अपने हाथों से टेक लगाए रूही को देख उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए एक जुनून के साथ बोला, रूह मुझे यहां परेशान करके तुम यहां चैन की नींद सो रही हो, या तो अच्छी बात नहीं है ना? अब तुम अपनी नींद पूरी कर अपना सुकून ले रही हो, अब मुझे भी तो अपना सुकून लेना पड़ेगा ना, वरना मुझे चैन की नींद कैसे आएगी। इतना बोल वे रूही के गुलाबी होठों को देखता है जो सोने की वजह से हल्के से खुले हुए थे, जो रुद्र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थे। रुद्र उन होठों को अपनी शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था। जब उसे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वे छुपकर रूही के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। साथ ही साथ वे अपने हाथ रूही के कपड़ों के अंदर डाल रूही के नाभि पर अपनी उंगलियां गोल गोल घुमा रहा था, जिसके नींद में ही रूही की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगती हैं, जिसका उसे खुद ही पता नहीं चलता। वहीं रुद्र के कानों में जब रूही की हल्की हल्की सिसकियां पड़ती हैं तो वे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वे रूही को और भी डिप किस करने लगता है। वहीं रूही को नींद में ये सब किसी सपने के कम नहीं लग रहा था, साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था, इसलिए वे भी नींद में हल्के हल्के अपने होठ चलाने लगती है। वहीं रुद्र रूही का साथ पाकर तो किसी और ही दुनिया में चला गया था। वे बिना देरी किए रूही के मुंह के अंदर अपनी जीभ डाल उसके पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। साथ ही साथ वे अपनी जीभ रूही की जीभ से उलझा काफी पैशन के साथ किस करने लगता है, जिसे महसूस कर रूही की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं। साथ ही साथ उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वहीं रुद्र जब देखता है कि रूही को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो वे रूही के होठों पर आखिरी बार किस करने लगता है। रुद्र अपने एक्साइटमेंट में रूही को तेजी से बाइट भी कर लेता है, जिसका उसे खुद भी पता नहीं करता। लेकिन रुद्र के बाइट करते ही रूही की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं और उसकी आंखों से सारा नींद एक पल में चला जाता है। जब वे रुद्र को इस तरह खुद को किस करता हुआ देखती है, रुद्र को इस तरह सोते टाइम किस करता हुआ देख रूही को काफी गुस्सा आता है और वे रुद्र को खुद से दूर धक्का देने लगती है। वहीं रूही को धक्का देता हुआ देख रुद्र को रूही के होठों को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर रूही की सांसें उखड़ता हुआ देख रुद्र रूही के होठों को आखिरी बार स्मूथ कर छोड़ देता है। वहीं रुद्र के छोड़ते ही रूही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर यूं ही सांसें लेने के बाद रूही रुद्र को देख गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, क्या आप मुझे अब सोने भी नहीं देंगे? और ये क्या, जब देखो तब मुझे किस करते रहते हैं? मेरा पूरा मुंह गंदा कर दिया और आपने ये अपना पूरा सलाइवा भी मेरे मुंह पर लगा दिया। छी,
इतना बोल वे अपना गंदा सा मुंह बना लेती है। लेकिन इस बात से अनजान कि रूही की सारी बातें सुनकर रुद्र उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा है।